ಸೂತ್ರಮತೇ ಮತ್ತ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪಮತಸ್ಯಾಗಜವರಿಪುರಿಂ ಮಾಥುರಿಂ ಗೋಷ್ಟವಾಟಿಂ ರಾಧಾಕುಂದಂ ಗಿರಿವರ್ಮಹೋರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಜಸ್ಯ ಪ್ರತಿಕೃತಯಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಸಂ ಅಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಪದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರಸ್ತಿಷೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಸದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ಸದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿಹೀನಾಯ ಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಚಿತ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಬಿಂದೇ ನಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಯಂ ಪ್ರಾಬ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ತಿರಹ ಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಸರ್ವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ. ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜೀವಾಮಿ ತ್ವಯಾಭಿ ಇತಿ ವಿಜ್ಞೇ ರಾಧೇ ತನ್ನ ಮಾಂ ಶರಣಂತಿಕೇ. বেশি করে লাগাবে, আমি দেখতে পাই না এটা বড়, যদি বাল্ব হয় তাহলে দেখতো, তুমি দেখতে তো কোনো আজকাল দেখা তো কম হয়ে গেছে, চশমাটাও ঠিক নেই আজকাল. ভাগবত দশম স্কন্ধ 39 অধ্যায়, কল হম লোকনে অক্রূর কা নন্দগাঁও জানা ইয়ে বর্ণন কিয়া, আর সবেরে কৃষ্ণ জানে কে লিয়ে প্রস্তুত হ্যাঁ বলদেবজি কে সাথ অক্রূর উনকো রথ মে চড়া রহে, আর উস সময় মে গোপ্য গোপ্য গোপীয় নে কহা. इसके संबंध में हमने बताया कि तीन श्लोक उन्होंने पहले कहे, इसके बाद में और क्या हुआ. तो ये क्या है भाई, ये क्या है, तीन श्लोक गोपियों ने कहा पहले. अहो विधाता विधाता कवनक क्वचित गया, अक्रूर को देखा और वो ले जा रहे हैं कृष्ण और बलदेव को रथ पर, यह देख करके गोपियां अपने भाव को छिपा न सके और वह निर्लज्ज होकर सामने आ गए. उस समय में उनकी लज्जा तज्जा धरी रह गई. इसलिए इसका प्रतिवाद करने के लिए वो खुद आई. जब देखा नंद बाबा ने प्रतिवाद नहीं किया, यशोदा मैया ने नहीं किया, बड़े बूढ़ों ने नहीं किया, मैया यशोदा ने नहीं किया, तब इनसे रहा नहीं गया और इसका प्रतिवाद करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ी, उसमें लज्जा इत्यादि को छोड़ दी। आई थिंक दैट आफ्टर माई क्लास एनी वन एक्सप्लेन्स यू एंड यू आर सेटिस्फाइड बाई देयर एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। ये क्या है देखो, गड़बड़ ना हो जाए, ये भी गया वो भी गया, ठीक। ये बहुत तेज बीच का होना चाहिए, मैं एक तो कम कर दो 20-25। हेलो गबर मत करो, अभी तो वैसे ही समय हो। ये ठीक, सत्यूनी श्लोकों में गोपियों जी ने विधाता को तीन रूपों में उन्होंने ग्रहण किया। पहले में निष्ठुर और दूसरे में दुरात्मा और तीसरे में दत्तापहरण की। देखिए दत्तापहरण कौन तो तीन, सुनो तुम, तीन प्रकार के उन पर दोष लगाया। पहला निष्ठुर विधाता को और दूसरा लगाया दुरात्मा। दुरात्मा माने क्या? आत्मा जिनकी दुष्ट है, दुराचार जिसको कहते हैं, तो दुराचार नहीं कहा जाएगा, दुरात्मा। और तीसरा है दत्ता पर, मैंने जो दे करके, दान दे करके उस चीज को ले लेता है उसको क्या कहते हैं, दे करके और उसको अपहरण कर। जैसे कि नृग महाराज ने गायों को दान करके और फिर दान की हुई गाय में से भी एक को फिर से दान किया, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें अभिशाप प्राप्त किया। ब्रह्मा जी को, विधाता को इन्होंने तीन दोष लगाए, जो पहला तो दो तो स्पष्ट किया, आपका जो आचार है, जो पहले प्रणय करा करके प्रेम से मिला दे दो और फिर उनको अलग कर दे दो, निष्ठुर की भांति, कोई उसमें प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे अबोध बालकों की तरह तुम्हारी ये क्रिया निष्फल है। पहली बात ये, तुम निष्ठुर हो। और दूसरा बतलाया परोक्ष मसाधु ते कृतम, कृष्ण को इतना सुंदर है और इसको देखने का हमें सुयोग दिया, दर्शन करने के लिए आंखें दी और यह सुयोग दिया जी कृष्ण का हम दर्शन करें, जो निखल सृष्टि का सार उसका रूप है, और उसको दे करके दिखलाया, अभी अभी हम लोग उसको से भी मिले, अभी तुरंत अभी मिले और तुरंत उसे छीन दिया। जैसे कोई भोजन दिया और उसका पहला ग्रास उठाया, उसकी सुगंध केवल आई, खा नहीं पाया और थाल को निकाल दिया, ऐसा तुम। और तीसरा लगाया क्रूरस्तुम, क्रूर अक्रूर नाम धारण करके आया, और जो दान दिया था आंखें और कृष्ण का रूप दर्शन करने का, या तुमने दत्तापहार दी हुई चीज को, तुमने दान दी हुई चीज को फिर से तुमने ले लिया। ये तीन दोष लगाए हैं, जिसमें हमने दो के संबंध में कुछ वर्णन किया। अब तीसरे के संबंध में गोपियां जो कह रही हैं, क्रूरस्तम अक्रूरम मात्र, ये विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है, सारंग समंत गोष्ठस्य विधिना हरतो हरिम प्रहृत्य गोप ज्योतिषु निर्घृणेन दुरात्मा। यहाँ विधाता को दुरात्मा कहा गया है। ब्रज गोप भूमि की सौंदर्य सार जो कृष्ण का रूप है, उस हरि को तुम हरण करके मथुरा ले गए हो वृंदावन से। ऐसे विधाता गोप रमणियों को निष्ठुर और दुरात्मा मत आहत कर दिया। निष्ठुर और दुरात्मा की भांति गोपियों को आघात पहुंचाया है। विष्णु पुराण में भी ऐसा लिखा गया, निष्ठुर हृदयहीन। हृदयहीन किसको कहते हैं? दूसरों का सुख दुख समझने की जिसमें बुद्धि नहीं है वो हृदय ही होता है। जैसे कि चित्रकेतु महाराज का लड़का हुआ, उनकी रानियां क्या कह रही हैं? हम बाज होती तो अच्छा रहता, ये लड़के देखो के इतना सुंदर और अभी उठा लिया 5 वर्ष की उम्र में, तुम्हारे जैसा हृदय ही। यही सब चीजें वहां पर भी उनको बतलाया विधाता को। और प्रवंचक, प्रवंचक मैंने ठगने वाला, तुम ठग हो। विधाता के प्रति कृष्ण बिरहनी ब्रज गोपियां इतना ही कहकर के शांत नहीं हुई, ये तुम हृदयहीन हो, निष्ठुर हो, प्रवंचक हो, आगे भी और भी कह रही हैं। वो क्या कह रही? हाय हाय विधाता, ये जो संसार की रचना करने वाला विधाता है, इसका नियम बनाने वाला है, वह निर्दय दुरात्मा तो है ही है, यही उसके लिए गाली गलौज ये यथेष्ट नहीं है, बल्कि वे दत्तापहारी, दान दे करके और उसको छीन लेना, ये बड़ा भारी पाप है। वे अत्यंत क्रूर, और इसलिए क्रूर, इस समय वो विधाता क्रूर अक्रूर नाम धारण करके ये विधाता ही आया है, ये दूसरा नहीं है, वो स्वयं आया है। इसने जो हमें आंखें दी थी, कैसी आंखें, अत्यंत सुंदर, और इस आंखों के द्वारा ये सृष्टि का सार सौंदर्य, जिसके एक एक अंग में वो भरा पड़ा है, सृष्टि के सौंदर्य का साथ आंखों में, पलकों में, अंगों में, कपोलों में, मुस्कुराहट में, उसके बस्तक्षल पर, उसके ललाट पर, उसके केश में, उसके कमर में, उसके पैरों में, एक एक सौंदर्य का साथ छिपा है। एक समय पद्मा जी, चंद्रावली जी की सखी, कहीं विशाखा इत्यादि जी से मिल गई, तो उन्होंने कहा, आज हमारी सखी ने कृष्ण को ऊपर से नीचे तक सारे अंगों को देख करके लुप्त हो गई और देखती रह गई नीचे से ऊपर तक, सिख से कहा नख तक, पैरों के नख से लेकर के पूरा देखा। तो विशाखा जी बोली, हम दुर्भागी हैं और हमारी सखी भी बड़ी दुर्भागी है। इसलिए दुर्भागी है, यदि हमारी सखी कृष्ण के अंगों का कभी यदि देखती है, अपलक नेत्रों से यदि भ्रुकुटी पर उनकी नजर पड़ रही, अब वो अपने आंखों को ऊपर से नीचे तक नहीं देख, उन्होंने आज तक कृष्ण के पूर्ण अंगों को कभी नहीं देखा, बस एक ही अंग पर टिक गया, कभी नक्षचंद्रिका को पड़ गई तो वहीं पर रह गया, उसे नहीं। कभी बस तख्त पर पड़ गया, कभी कमर पर पड़ गई त्रिवली, तो वहीं पर पड़ गई। दूसरे यह सुनकर के वो बड़ी लज्जित हो गई। उसी को यहां पर कह रहे हैं ये अक्रूर बन करके, ये क्रूर ही अक्रूर बन करके आया है। यदि अक्रूर होता, क्रूर नहीं होता, तो ऐसा आचरण नहीं करता। ये कृष्ण को ब्रज से ले जाता हम गोपियों से दूर। क्रूर के अतिरिक्त और किसी काम व्यक्ति के लिए संभव करें, ये अस्वस्थामा रानियां सोई हैं और उनके गोदी के पार्टी में उनके लड़के सब सोए हुए हैं, धृष्टद्युम्न इत्यादि सोए हैं। सोने की अवस्था में गया और उन्हें तलवारों से उन बच्चों के पांचों के सिर काट लिए। अस्वस्थामा उन्हें किसको धृष्टद्युम्न को मारा, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा था, उसका बदला लेने के लिए इसको मारा। और उस शिविर में जितने आदमी सोए थे रात में आधी रात के समय में सबका विनाश किया, किसी को वहां से निकलने नहीं दिया। वो तो पांचों पांडवों को कृष्ण चलाकी से दूसरी जगह लेकर के चले गए थे, इसलिए वह नहीं थे। और काट करके उनका मुंड दुर्योधन के पास में ले गया, कहां रण क्षेत्र में आधी रात के समय में, यानी पांचों पांडवों का सिर में काट लाया और लेकर के उनके हाथों में दिया। दुर्योधन का बड़ा क्रोध था, उसने भीम का सिर मांगा और उसको लेकर के दोनों हाथों से ऐसे दबाया, चूर्ण विचूर्ण हो गया। अरे तुमने धोखा दिया, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये किसका शरीर हो सकता, ये तो मालूम है भीम के बच्चे का ये शरीर है। भीम का शरीर तो वज्र से भी अधिक कठोर है और वो इतना जल्दी चूर्ण नहीं हो सकता। तुमने हमको धोखा दिया, शायद हमारे वंश की परंपरा का तुमने नष्ट कर दिया। अरे धोखेबाज तू निष्ठुर, दुर्योधन ने भी उसको निष्ठुर कहा और उन्हें लग गया जो हमारे वंश को एकदम सब समाप्त कर दिया तूने। और ये कहता हुआ वो अंतिम श्वास लेकर के मर गया। ये है क्रूर लोग, ये पुतना से भी अधिक क्रूर हैं। ऐसी तुलना दे रही है गोपियां, केवल गोपियां एक नहीं, कितनी गोपियां हैं, लाखों गोपियां। वो तो पांच मरे और ये लाखों गोपियों को, लाखों ब्रजवासियों को, सबको ये मार रहा है। ले जाने कृष्ण सबके प्राण है और कृष्ण वो ले गया, सभी मरे। इसलिए ये यथार्थ में ये क्रूर है। इस क्रूर के अतिरिक्त अक्रूर से ये काम नहीं हो सकता। इस प्रकार से कृष्ण विरह में जर्जर गोपियां, विरह में उन्मादित होने वाली उन्मादिनी गोपियां, विधाता के प्रति निष्ठुरता, दुरात्मा और अंत में दत्तापहरण, दांते ही चीज को पुनः ले लेने का आरोप लगाया। हाय विधाता, तुमने कृपा करके जिस दिन ये आंखें दी और सृष्टि का सार सौंदर्य जोग माया का बल दिखलाने के लिए, प्रदर्शिता जोग माया बलम प्रदर्शिता, और तुमने दिया और उसको हमने देखा, अपना जीवन हमने कृतार्थ माना। उस दिन हम लोगों ने कृष्ण का जब रूप देखा तो हमने कहा कि सृष्टि का ये कौशल है, सृष्टि रचना का अपूर्व कौशल। कृष्ण यदि जगत में नहीं आते तो नहीं आते, तो सृष्टि का अपूर्व कौशल क्या है, सृष्टि का सार। इसलिए बतलाया वृंदावनम, वो क्या है, मथुरा की रमणियां कह रही, ये भी है। और एक वृंदावन पृथ्वी में श्रेष्ठ है क्योंकि गोपियां वहां पर हैं। वितनों के कीर्तिन जब देव केश उतर पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, लब्ध लक्ष्मी माने क्या, लब्ध लक्ष्मी माने क्या, कृष्ण के सौंदर्य रूपी शोभा ये गोपियां निहार रही है। इसलिए ब्रज में सबसे श्रेष्ठ क्यों है, वहां पर गोपियां हैं। गोपियां किस लिए, कृष्ण का यह सौंदर्य पान करती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने, विधाता ने यह सुअवसर हमको दिया, तुमने दिया था, और आज अक्रूर नाम धारण करके इन चक्षुओं को तो फिर अब निकाल लेना, दिया और फिर उसको निकाल लेना, ये तो तुम बड़े भारी क्रूर हो। यदि कहो जो अक्रूर, तो कृष्ण को लेने के लिए आया, उनकी आंख तो निकालने के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब तो यही है ना, यदि कृष्ण को ले गया तो उनकी आंखें निकाल लेना ही है। इसलिए यथार्थ में है तुम बहुत दुरात्मा हो और द्रोह देहिक देश नेत्र इसे तुम यदि अपहरण कर रहे हो कृष्ण को यहां से, तो इसका मतलब है हम लाखों गोपियों का आंख निकाल रहे हैं, और केवल वही नहीं, वो तो सभी हम लोग मर जाएंगे, इसका पाप भी तुमको लगेगा। शायद गोपियों के इसी अभिशाप के कारण अंत में अक्रूर को क्या हुआ, द्वारका से चला जाना पड़ा कृष्ण को छोड़ करके उनको, और उनको द्वारका छोड़ करके जाना पड़ा, और यहां तक कि काशी गए, काशी को छोड़ना पड़ा, और कहां मिथिला जाना पड़ा, बड़े दुख उनको भोगने पड़े। फिर कृष्ण ने करुणा करके फिर उनको क्षमा किया। इसलिए इस अक्रूर को कृष्ण का दर्शन भी नहीं हुआ, और अंत में द्वारकापुरी छोड़ करके कृष्ण अंतर्ध्यान भी हो गए, सबको छोड़ दिया वो अपराध के कारण। गोपियों को बहुत दुख, अपराध मैंने क्या, अपगत राध, राध मैंने क्या, प्रीति। अपराध मैंने वो होता है जिस हम नाम को करते हैं, जिस वैष्णवों की सेवा करने से कृष्ण की प्रीति मिलती है, जिस सेवा कृष्ण के प्रति, जुगल के प्रति जो सेवा की भावना है, जिस कृत्य के द्वारा कारण, जिस कार्य के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा ये सब नष्ट हो जाता है, उसको अपराध कर अपगत हैया से राध, राध माने प्रीति, वो प्रीति ही नष्ट हो जाती है। इसे भाई वैष्णव के प्रति कोई भी आचरण करेगा, उनकी आलोचना करेगा, उनके विरुद्ध में निंदा करेगा, धाम के प्रति अपराध हो, नाम के प्रति अपराध हो, तो ये लोग नहीं सर, वो प्रीति नष्ट हो जाती है। पाप करने से वो प्रीति नष्ट नहीं होगी। जगाई मधाई, देखो तीन विचार देखो, एक जगाई मधाई का उद्धार महाप्रभु जी ने किया, दूसरा प्रकाशानंद प्रबोधा क्या सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने, महाप्रभु जी ने उद्धार किया, और तीसरा प्रकाशानंद, तीन है ना। इनमें सबसे दुरात्मा कौन है, सबसे बड़ा अपराधी कौन है, प्रकाशानंद। ये हमारे जगाई मधाई जी पाप किया, अपराध नहीं किया, उसको फुर्सत नहीं थी अपराध करने का, मद्यपान कर लिया, इधर उधर मारपीट किया, और इसके बाद में पड़े रहते थे, किसी वैष्णव की निंदा नहीं की। इसलिए महाप्रभु जी ने या नित्यानंद जी ने उन पर करुणा कर दी, सहज रूप में हो गया, कितने दिन में, एक दो दिनों में ही वो दांत आ गया। और प्रकाश ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उद्धार होने में कितना समय लगा, महीनों लगा, 7 दिन, उसके पहले से ही 7 दिन तो सुना, और उसके पहले उनके संपर्क में कितना आया, महीने करीब लगे, क्यों, नहीं उतना अपराधी ने, वैष्णव की निंदा नहीं करता था, किंतु कृष्ण का गुणगान इत्यादि नहीं करता था, और उनके प्रति द्रोहाचरण भी नहीं कर, कभी नहीं सुना गया कि किसी वैष्णव की उसने निंदा की हो, किंतु ये उन्होंने कहा कि भगवान निराकार है, निराकार है, निर्विशेष है, ये कहा, इसलिए उसको कृपा करने में महाप्रभु जी को विलंब हुआ, और नित्यानंद प्रभु की साधना ने महाप्रभु पूरा कृपा उस पर जोर लगाना पड़ा तो बड़ी मुश्किल से एक महीने में उसका सुधार हुआ। और प्रकाशानंद सरस्वती क्या था, घोर मायावादी, वैष्णव को भी अपराध मान करता था और कृष्ण के प्रति भी अपराध करता था, घोर निंदुक था। चैतन्य महाप्रभु की भी उसने निंदा की मार दो, इसलिए उसको बहुत समय लगा। कब से महाप्रभु जी अपनी गृहस्थ लीला में जब थे उसी समय में कह रहे हैं काशी ते पड़ा, उसी समय से उनकी बातचीत की चर्चा कर रहे हैं। और फिर गए संन्यास लेकर के वहाँ दक्षिण गए, इधर उधर गए और वहां से घूम करके आकर के तब फिर वृंदावन में आते समय में गए, उस समय भी नहीं, जब लौट करके आए तब इसमें दो तीन वर्ष का समय लगा। क्यों? ये अपराधी था, घोर अपराधी, वैष्णव अपराधी था, भगवत अपराधी था, नामा अपराधी था, सब प्रकार से अपराधी था। इसलिए इस पर करुणा करने में बहुत समय लगी। इसलिए ये विचार करके देखना चाहिए वैष्णव के प्रति कोई किसी प्रकार का अपराध न हो, किसी प्रकार से भजन करने हम आए हैं, किसी वैष्णव की निंदा न हो, धाम के प्रति कोई अपराध न हो, मन में कल्पित भावना नहीं आए। अपिचेष्टु दुराचारो, यदि दुराचारी है तो छोड़ दो, किंतु भगवान का एकनिष्ठ रूप में एकांतिक रूप में भजन करता है खबरदार निंदा मत करो, उसको साधु ही मानो। क्यों? अजामिल की भांति भगवान का नाम लेने पर नारायण का वो काम तो करता रहा किंतु उसका कोई बीस नहीं रहा। इसलिए ऐसे वैष्णव जो एकांतिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भजन करते हैं, उनमें दुराचार भी कोई देखो, सुदुराचार, तो फिर निंदा मत करो। क्या करो? स्वच्छ शांति निगच्छति, क्या है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभात साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक् वसितो हि स परम भवति धर्मात्मा। धर्मात्मा तो उसी समय हो गया, अब प्रकाश में उसकी धर्मात्मा का अब कुछ दिनों के बाद ही आ जाए, उस समय उसका कृत्य जो कर रहा है सुराचार, उसका संग मत करो, किंतु निंदा मत करो, उसके हृदय निर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी, ऊपर में प्रकाशित हो जाएगा नहीं ये परम धर्मात्मा है। वेश्या केवल तीन रात हरिनाम सुना हरिदास ठाकुर से, जिस समय पहला नाम सुना उस समय क्या हुआ, बस उसमें प्रवेश कर गया, उसी समय धर्मात्मा हो गई, किंतु तीन दिनों के बाद में लोगों ने देखा कि यह धर्मात्मा। इसको समझना चाहिए, मत निंदा करो साधु संतों की, जल्दी से वो धर्मात्मा हो जाएंगे, उनका किया हुआ दुराचार का बीस उसमें नहीं, वो तो पहले ले लिया, इस शास्त्र में जगह जगह इसका वर्णन किया गया। इसलिए साधु निंदा मत करो, गुरु की अवज्ञा मत करो, शास्त्रों की निंदा मत करो, देवताओं और भगवान का नाम बराबर है, यह सब मत करो जो दर्शन महापरादेश। इसलिए इनकी दशा अक्रूर की हुई, कृष्ण के रहते हुए भी उनको ब्रज वहां से भागना पड़ा, और फिर ब्रज में नहीं आए, आए कोई इतिहास नहीं मिलता, किंतु उद्धव जी का देखो, उद्धव जी का क्या हुआ, कृष्ण ने भेजा भी और पीछे भी यहाँ की घाट बंद करके ब्रज में हमारे श्याम कुटी में गोवर्धन में एकदम मान कुसुम सरोवर के पास में जब कभी वहीं से प्रकट हो जाते हैं, उनका नित्य निवास इस ब्रज में हो गया गोपियों की चरण धूलि की सेवा करने का। इसलिए ये सब चीजों को याद रखो भजन करने में, तब भगवान की कृपा होगी, इन चीजों को समझोगे। इसलिए करें, तुमने बहुत अज्ञ की भांति से आशा किया, कृष्ण को यहां से हरण करके ले गया अक्रूर, इच्छा पूर्वक ले गया, विष्णु पुराण में भी ऐसा देखा जाए, अहो गोपी जनस्य दर्शयिता महामिदिम उत्क्रांताद्य नेत्राणि विघात्रा करुणात्मना। हाय हाय, गोपियों के सामने महानिधि माने महासंपत्ति को दिखला करके और दिखलाते दिखलाते फिर उसको खींच लिया। आज विधाता गोपियों के नयन नेत्र को निकाल रहे हैं। हम लोग इसको नहीं समझेंगे, जिसको कृष्ण के प्रति ममता है ऐसा भाव है वो लोग समझेंगे। महाप्रभु रहते तो आज उनकी क्या दशा होती सुन करके, रूप सनातन भी रहते तभी उनकी उसकी क्या दशा। इस प्रकार बल्भाचार्य ने भी अपनी सुबोधना टीका में ऐसा लिखा है, अभी देखो सुरात्मत्वम दत्तापहरणम तथा त्रिदोष ब्रह्मणम प्राहु व्यवहार जप कृतम। इन चीजों का आरोप अक्रूर पर किया। आगे थी गोपियां कहने लगी, नंद सोनु खनभंग सौहृद समीक्षते न स्वकृतात् सुराजवत विहाय गेहान स्वजनान पतिश्च दास्य अद्धो अपगता नवप्रियः। इसका साधारण अनुवाद यह है क्षणभंग सौहृद, चंचल सौहृद, अभी किसी से प्रेम किया फिर दूसरे क्षण में प्रीति को काट दिया। कृष्ण को ये बतला रही है, आज जैसे भौरा एक फूल से प्यार करता है फिर दूसरे से उसे छोड़ करके दूसरे फूल पर चला जाता, फिर तीसरे पर चला जाता, यहां तक कि गंदे फूलों पर भी बैठ जाता है उनको छोड़ करके। कृष्ण को इस प्रकार से दोषारोप ये कर रहे हैं। चंचल सौहृद नित्य नव प्रिय, नए नए प्रिय को खोजने वाला ये नंदनंदन कृष्ण अपने विरह में कातर गोपियों को देख रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण के लिए ही पति पुत्र इत्यादि सबका प्रत्याग किया है, देह दैहिक सब कुछ प्रत्याग किया है, और वे सामने विलाप कर रही हैं, कोई मुछी तोड़ करके गिर पड़ रही हैं, कोई घोड़े का लगाम पकड़ रही हैं, कोई उसमें समर्थ न होकर के ऐसे ही विरह में मूर्छित हो रही हैं, और जिन्होंने कृष्ण का ये सब छोड़ करके कृष्ण की दासी बनी हुई हैं, लोक लज्जा तक को भी पी गई कृष्ण के लिए, और वो रो रही हैं विलाप कर रही हैं, उनको ऐसा देखते हुए भी कृष्ण हमारे तरफ में नहीं देख रहे हैं, ये गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण कैसे हो गए निष्ठुर, जिनके लिए हमने घर बार सब कुछ लोक लज्जा सब कुछ छोड़ दिया, आज ये कृष्ण निष्ठुर करके देख रहे हैं, मैं आ जाऊंगा ये भी नहीं कह रहे। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिष सत्तम विदोपुरजोषिता ध्रुवम या संप्रविष्टस्य मुखम प्रजस संपते कि पाश्यंत अपांग कलितस्मिता समम। ओ गोपिया करें, आज हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है, दुर्दिन है, किंतु आज मथुरापुरी की स्त्रियों के लिए और वहां के लोगों के लिए आज सुख प्रभात है, किसी के लिए सुख प्रभात और किसी के लिए कृष्ण के समीप आएंगे और कृष्ण उनको अंगीकार कर लेंगे साज ही में, क्योंकि बहुत सुंदर राजकुमारियां वो हैं। उन पूर नारियों के लिए आज यह रजनी प्रभात रजनी होगी, अत्यंत सुखमयी हो जो कृष्ण उनको अंगीकार करेंगे, और आज उनके लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद आज उनके लिए फला, आज दिन दिनों का उनका मनोरथ आज पूर्ण होगा। ताशा मुकुंद मधु मंजुभाषित गृहित चित्त पर वान मनस्वती कथम पुनर्नम प्रति आशा आश्यते बला ग्रम्य सलज्जास्मित दिभ्रमयी भ्रमण। हो हे अबलागन अपने सखियों को कह रहे हैं, पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं, इसके बाद में इनके टीकाओं का पाठ करेंगे। हे दुर्भागी अबला गोपियों, यदि कहो ये कृष्ण जाएंगे और लौट आएंगे, ये आशा दुराशा मात्र है। वे समस्त मथुरा की रहने वाली गोप जो नारियां हैं, मधुर से भी मधुर, उनसे भी मधुर तक मनोहर वाक्यों से कृष्ण को ठग लेंगी, उनको कृष्ण को आकृष्ट कर लेंगी मधुर मधुर वाणियों से। अतः उनके अधीन होकर के कृष्ण धीर होने पर भी उनके लज्जा मिश्रित हास्य से भ्रांत हो जाएंगे और वो कभी नहीं लौटेंगे। क्यों आएंगे, क्यों अपना ये आरोप कर रहे हैं वहां पर, जो कृष्ण जाकर के जो लौट आएंगे ये संभव पर नहीं है, असंभव है उनका लौट। आए आज वहां दशार भोजवंश के लोग, अंधक लोग विष्णु और शाक्त, आज उनके नेत्रों का महोत्सव वहां होगा, उनकी स्त्रियों का महोत्सव होगा और हमारा क्या होगा, इसके विपरीत महोत्सव, इसमें संदेह की बात नहीं है। आज वो बड़ी प्रसन्न होंगे वो सभी लोग, लक्ष्मी के ये प्रिय हैं, आज इस नंदन देवकी नंदन का वो लोग दर्शन पाएंगे। और वे जो पथ में जो जाते समय में कृष्ण का दर्शन करेंगे ग्रामीण लोग, उनका भी अहो भाग्य होगा कि आज उस देवकी नंदन का दर्शन। देवकी नंदन थोड़ा सा क्रोध में भरकर इनको बतला रही, इस प्रकार से वो गोपियां कहने लगी। अब इसका हम व्याख्या हम अब परसों करेंगे, कल रामनवमी है, मैं तो आज ही से अगले वर्ष हम लोग दो तीन दिन का रखेंगे, यह रामायण का पूरा तुलसी रामायण का पूरा पाठ हो जाए कीर्तन। कल यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं दोपहर को आए, दोपहर में सवेरे से ही हम लोग आरंभ करेंगे, पहले वाल्मीकि रामायण से उनका चरित्र कुछ बतला करके और फिर हम लोग बात तुलसी की रामायण से जैसे मृदंग करताल इत्यादि के सहारे हम लोग कीर्तन करेंगे जहाँ तक हो सकेगा सुंदर कांड करके, और फिर हम लोग अयोध्या कांड में बाल कांड में कृष्ण का जन्म इत्यादि का हम लोग पाठ करेंगे। और अगले वर्षों में देखेंगे ये पूरे रामचरितमानस का हम लोग दो कितने एक दिन में हो जाएगा, दो दिन में
24 घंटे
में ना, तो 24 घंटे में हम लोग उसको प्रयास करेंगे अगले वर्ष, इस बार इतना ही रहेगा। तो कल आप लोग जितने हैं आप लोग सब आएंगे, और भी अच्छे अच्छे जो कीर्तन करने हैं उनको भी लाएंगे, और कल हम लोग सवेरे से ही कीर्तन हम लोग कब आरंभ करते हैं, 6 बजे 6:30 बजे कीर्तन के बाद में मैं बैठूंगा और कुछ प्रवचन करके फिर इसके बाद में हम लोग गीता जितने रामायण की पोथियां हैं उन सबको ले आकर के वहां पर उपस्थित। गौर प्रेमानंदे।